ओम शांति। पिछले तीन दिनों में आपने अनेक सत्रों में अनेक बातें सुनी, चाहे वो शाश्वत योगिक खेती के विषय में हो या फिर राजयोग के सत्र हो। परंतु अभी का जो सत्र है वो हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं। अभी हमने एक गीत सुना, समय का पंछी उड़ता जाए। समय के लिए दुनिया में बहुत कुछ कहा हुआ है और अक्सर लोग ये मानते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। परंतु वास्तव में समय हमें समय प्रति समय कुछ कहना चाहता है, संकेत देना चाहता है या हमसे कुछ प्रतिउत्तर की मांग करता है। अगर हमने संकेत को समझ लिया और उसी अनुसार हमने प्रतिउत्तर दिया तो जीवन हमें आगे बढ़ा देते हैं या जीवन में आगे बढ़ना सहज हो जाता है। परंतु अगर हमने समय के संकेत को नहीं समझा और उसके अनुकूल प्रत्युत्तर नहीं दिया, विपरीत प्रत्युत्तर दिया, तो समय बड़ा कठोर भी हो जाता है, वो अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ कर देता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा हुआ है, इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय की मांग है परिवर्तन, और अगर समय के हिसाब से हमने परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। और उसके बावजूद भी अगर नहीं किया परिवर्तन तो समय को दूसरे शब्द में काल कहा जाता है, वो काल तो क्या महाकाल का रूप भी ले लेता है। तो समय जो संकेत देता है उसको समझना आवश्यक है, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर एक प्रश्न हमेशा बना रहता है और वो प्रश्न है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न उठता है, उठता है, और उसका जवाब मिलता है। और जब जवाब नहीं मिलता है तो अंदर में कितना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो समय जो कह रहा है उसको समझना जरूरी है। अगर बार बार कोई घटना हमारे साथ घट रही है तो उसमें से भी हमें कुछ सीख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए समय हमारे सामने आता है। लेकिन ये समय का पंछी उड़ता जाता है, अगर समय के साथ इस संसार में हर चीज जो परिवर्तनशील है परिवर्तन नहीं किया तो समय का शिकार बनना स्वाभाविक है। समय क्या कहता है? समय एक चक्र में चलता है, इसीलिए कुदरत के अंदर जितने भी चक्र है समय के, वो नित्य चलते रहते हैं। चक्र माना जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो नित्य चलता है। समय के अंदर जितने भी बने हुए चक्र है वो भी नित्य चलते हैं। दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र है, नित्य चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, वो भी नित्य चलता है। कुदरत की साइकिल को देखेंगे, पानी वेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आके मिल जाता है। ये चक्र भी चलता रहता है। कौन सी घड़ी को शुरुआत की घड़ी कहेंगे? मालूम नहीं। रात को 12 बजे हमने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रात को 12 बजे ही ये चक्र आरंभ हुआ था। नहीं, पता नहीं। लेकिन एक बात है कि हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात का चक्र है, उसकी भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म में भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको हम कहते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा। कई लोग सोचते इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा? कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात्रि सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। ठीक इसी तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है, कोई चाहे या न चाहे। परिवर्तन नित्य है, परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन न हो ऐसा हो नहीं सकता है। कुदरत की रचना ऐसी है कि घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है। तो घोर पापाचार की दुनिया भी परिवर्तन होनी ही है। लेकिन एक बात है कि हर चक्र की एक अवधि होती है, जिसमें उसको वो साइकिल को कंप्लीट करना होता है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ही वो चक्र कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है एक साल, एक साल के अंदर वो चक्र कंप्लीट होता है, 365 दिन में होता है। इसी तरह ये काल चक्र के भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। 5000 कहां से आया, किसने कहा, कहां लिखा हुआ है? शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का है, अब 5000 का कैसे कहते हैं? क्या सबूत है? मैं एक ही सवाल पूछती हूं कि लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है? है? नहीं है ना? फिर कैसे स्वीकार कर लिया कि लाखों साल का एक एक युग है। 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? वैसे देखा जाए तो सबूत दुनिया के अंदर किसी भी चक्र का नहीं है। 24 घंटे कहां से आए पता है? क्या बेसिस है 24 घंटे का? 60 सेकंड की एक मिनट बनी, 60 मिनट का एक घंटा बना, और ऐसे 24 घंटे में ये दिन और रात के चक्र को बांट दिया। अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलता था। 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? घंटे कम हो जाते थे, ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था दिन और रात का। चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 22 घंटे में बांटो, या 24 घंटे में बांटो, या 25 घंटे में बांटो, क्या फर्क पड़ना था? इसी तरह अगर 50 सेकंड का एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था। 50 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलना ही था। तो 24 घंटे किस बेसिस पर कैलकुलेट किया गया, कोई प्रूफ है? नहीं। इसी तरह ऋतुओं का चक्र अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, और हमने स्वीकार कर लिया, और इस तरह 12 मास का एक कैलेंडर बन गया, और सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी एक विज्ञान पर ही बना है, और हिंदू कैलेंडर में साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? हाँ, कितने दिन होते हैं? हाँ, 3 साल में अगर अधिक मास आता है तो साल में कितना दिन होता है? 354 दिन। 354 दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, है ना? तो इसीलिए कहा, अब 354 सही है या 365 सही, कौन सा सही है? हाँ, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं, दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर, और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर पर। यह तो नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, ये इंग्लिश कैलेंडर सही है इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, हिंदू कैलेंडर भी साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस, जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेट। आज भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताते हैं, एक्यूरेट टाइम पर होता है, या जब पूर्णमासी और अमावस्या होती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है, एक्यूरेट चलता है। तो कौन सा एक्यूरेट हुआ, इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर। फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को, उसी पर चल रहे हैं। तो 24 घंटे का कोई सबूत नहीं, 365 सही, 354 सही, उसका कोई सबूत नहीं, और 5000 का सबूत चाहिए। अगर उसको स्वीकार कर सकते हैं तो 5000 को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? ऐसे 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चलता है? चलता है महाभारत कि नहीं चलता है? तो हो गया 5000 साल। महाभारत में जो पात्रों का वर्णन है, शकुनी जैसे पात्र आज के दुनिया में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। हा? उस महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखा है और आज कितने हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर के अंदर आग लगा रहा है ना? भाई भाई के बीच में आग लगा रहा है। दुर्योधन जैसे पात्र आज के संसार में है या नहीं? दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, शक्ति का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। दुशासन जैसे पात्र है आज के समाज में? बहुत है दुशासन। और उसके बावजूद माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी है या नहीं है? तो महाभारत के सारे पात्र तो अभी दिखाई दे रहे हैं, तो महाभारत काल पुनः आ गया कि नहीं आया? तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से भी ये बात बताई गई है उनके पवित्र धर्म पुस्तक में कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से भी बताया गया है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नास्ट्रडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो 5000 हो गया। मायन कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कैलेंडर है ही 5000 साल का, है ना? 2012 में भारत के टीवीओ में काफी चला था कि मायन संस्कृति के हिसाब से उन्होंने डेट भी दे दिया था। कौन सी डेट थी? कितना एक्यूरेट याद है हमें, है ना? 21 दिसंबर 2012। मैं जून जुलाई के आसपास, मेरा मेक्सिको जाना हुआ था और जब वहां गई तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसी स्थान पर मेरा जाना हुआ जहां ये मायन खंडर थे, है ना? तो वहां हमें कहा कि चलो आपको ये मायन खंडर दिखाने ले चलते हैं। तो मैंने कहा हमारे भारत में टीवी पर बहुत आ रहा है आजकल, है ना? तो जब हम गए तो जो हमें गाइड मिला था वो मायन वंशज था, तो बहुत सुंदर तरीके से सारा दिखा रहा था, बता रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ कि भई आप लोगों ने डेट दे दिया है कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी, ऐसा है आपके उसमें कैलेंडर में लिखा है? तो उसने कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा हमारे भारत में तो बहुत टीवी पर रोज चल रहा है, कितने लोगों के फोन भी आते हैं कि क्या सचमुच बहन जी दुनिया खत्म हो जाएंगी 21 दिसंबर 2012 को? कई लोगों में भय देख रहे हैं हम। तो उसने कहा हमने ऐसा नहीं कहा है, ये तो फिल्म बनाने वालों ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये सारा किया है। तो मैंने कहा कुछ तो कहा होगा आपने। तो उन्होंने कहा, हमने ये कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को हमारा 5000 साल का कैलेंडर पूरा हो रहा है और 22 दिसंबर से हमारा नया कैलेंडर 5000 साल का शुरू हो जाएगा और उसके पहले जरूर संसार में कुछ परिवर्तन आएगा, शुरू होगा परिवर्तन। तो परिवर्तन की प्रक्रिया तो आरंभ हो ही गई है, वो तो दिखाई दे रही है कि नहीं? तो हर धर्म में 5000 की बात जरूर मिलेगी सुनने को, लेकिन लाखों साल का एक एक युग ये कहीं नहीं मिलता है, खाली हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मिलता है। लेकिन तब फिर प्रश्न ये आता है कि फिर ये आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, वो सही है कि गलत है? वो भी सही है, वो सही है। क्यों? क्योंकि जैसे दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। 2015 साल से हम गिनती करते हैं, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात का चक्र चलता था कि नहीं चलता था? चलता था, हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ? इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र कितनी बार इस पृथ्वी पर घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर अगर निकलेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक काल चक्र 5000 साल का है। कैसे चलता है ये 5000 साल का काल चक्र? उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए कि ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है और ऐसे ही क्यों निकाला जाता है, तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, हमारे पूर्वज करते आए इसलिए हमें करना है, है ना? लेकिन यही शुभ की निशानी क्यों है? तो स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है, उसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में हमें ये बात मिलती है सुनने को कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। तीनों घड़ी अच्छी है, जो बीत चुकी वो भी अच्छी है, जो चल रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं हमें, नहीं बहन जी, कोई कोई घटना तो बहुत बुरी होती है, उसको हम अच्छा कैसे समझे, है ना? उसको अच्छा समझना माना पता नहीं कैसे हम अच्छा समझे। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उनका कार एक्सीडेंट हुआ, और जब कार एक्सीडेंट हुआ तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में थे। अब हमें जब पता चला तो हमने सोचा मिलके आते हैं, तो जैसे ही हम गए तो काफी लोग खड़े थे वहां पर। जब हम गए तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे, तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही तो उस भाई को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। क्या हो गया? बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, आस्तिक बोल रहा था। आज उसके मुख से ऐसी बातें सुन रहे थे, इसीलिए आश्चर्य लग रहा था। बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बहन जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा हर एक का भला का काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, दोनों पैर खाली फ्रैक्चर हुए, वो तो ठीक हो जाएंगे, जान तो बच गई है, लेकिन वो बात उसको हजम नहीं हो रही थी, है ना? हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों गाली देते हो, कर्म का हिसाब किताब तो हरेक को भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन बाद में नहीं हो सकता था क्या? अभी होना था। आखिर हमें महसूस होने लगा, जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, बेटर है कि हम बाहर निकल जाएं। तो धीरे धीरे हम सरकते हुए बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आ गए तो उसकी पत्नी ने देखा तो हमारे पीछे पीछे आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन जी कुछ अगर उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। मैंने कहा, एक बात समझ में नहीं आई, इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाला, आज एक पैर क्या फ्रैक्चर हुए कि भगवान को गाली देने लग गए? वो तो ठीक हो जाएंगे थोड़े समय के अंदर। तो कहा, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है फिर? तो उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था। वो तो सभी जानते थे कि लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता था, सबको मदद करता था, परंतु अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा था। और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, तो उसको उस गैदरिंग में जाना था, विदेश जाना था, और वहां पर उसका सम्मान होना था क्योंकि उसने समाज के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया था, उसको अवार्ड मिलना था, सम्मान होना था। तो बार बार उसके सामने वही बात आ रही थी कि अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मैं जाता, मेरा सम्मान होता, मुझे अवार्ड मिलता, मेरा फोटो निकलता, वापस जब मैं इंडिया आता तो कैसे मुझे रिसीव किया जाता था, कितना सम्मान यहां मिलता था, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको भगवान पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने अच्छा कर्म किया, फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया, बाद में नहीं ले सकता था क्या? तो इसीलिए जब ये बात कही तो हमने कहा, भी क्या कह सकते हैं, आखिर हम तो वहां से निकल गए। 8-10 दिन के बाद जब हम गए, सोचा बाबा का भोग है लेकर जाते हैं, जब बाबा का भोग लेकर के गए तो वो भाई और उसकी पत्नी दो ही थे और कोई नहीं थे। सुबह में जैसे ही हमें देखा तो कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया कि जिस फ्लाइट में उसको जाना था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। तो मुझे वो खुद ही इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने लगा, बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना? नहीं तो आज मैं उसी फ्लाइट में होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, लेकिन जीवन भी खत्म हो जानी थी। घात आई लेकिन इतनी छोटी हो गई, जो लगता है कि जो होता है उसमें कल्याण ही होता है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। उसके बाद वो कहने लगा कि बहन जी ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने मुझे अपने अच्छे कर्म का सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया है, आज एक नया जीवन दान दे दिया है, इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता था। ऐसी जब अच्छी अच्छी बातें करने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता। मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन अगर गए ना तो ये 10 दिन गए। इतना टेंशन हो जाता था, जो आता था भगवान का नाम लेता था उसके ऊपर गुस्सा कर देते थे और ऐसा लगता था कि पता नहीं संबंध खराब हो जाएगा। एक एक को मैं बाहर ले जा करके माफी मांगती थी हाथ जोड़ करके, आप उसकी बात का बुरा नहीं मानना। कहा मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे मांगनी पड़ी। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन यही गए तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आ जाता है। मैंने कहा देखो बहन जी, गीता में तो ये बात साफ साफ लिखी है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है बहुत अच्छा, लेकिन क्योंकि हम लोग समझते नहीं उस जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते इसलिए दुखी हो जाते, टेंशन में आ जाते। अगर उसी बात को हम अप्लाई कर दे जब भी जीवन में कुछ भी हो, तो ये गीता का सार जो भगवान ने कहा है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है बहुत अच्छा, निश्चिंत रहो। तो कभी बुरा होगा, कभी टेंशन होगा, कभी गुस्सा होगा, इसीलिए स्वास्थ्य का हर शुभ कार्य पर लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? स्वास्थ्य का हर शुभ कार्य शुरू होने से पहले पंडित जी आएगा, स्वास्थ्य का निकालेगा, फिर क्या करेगा, उसके ऊपर एक कलश रखेगा और कलश के ऊपर नारियल रखेगा। अगर आप पंडित जी से पूछो कि भई ये स्वास्थ्य का निकाला, फिर उसके ऊपर ये कलश रखा, उसके ऊपर नारियल रखा, इसका मतलब क्या है, क्या रहस्य है, पूछो उसको कभी, वो क्या कहेगा, आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, ये आपका काम नहीं है समझने का, हमारा काम है हमको करने दो, है ना? शायद वही नहीं जानता होगा, है कि ना? आज हम आपको बता देते हैं इसके मतलब क्या है कि स्वास्थ्य का हर शुभ कार्य के लिए जब स्वास्थ्य का निकाला, माना सुअस्ति, ये घड़ी शुभ है। संशय नहीं लाओ, पता नहीं ये मुहूर्त ठीक है, घड़ी ठीक है, नहीं है, क्या है, संशय नहीं लाओ, ये घड़ी भी शुभ है। सुअस्ति, उसके ऊपर कलश रख दिया, क्योंकि हमारा ये सर देखो उसका कैसे शेप है, कलश जैसा है, यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर आप सोचेंगे तो हर घड़ी सदा शुभ है। ये ज्ञान युक्त बुद्धि से सोचने की बात है। और फिर ऊपर नारियल रखा, नारियल को नारियल नहीं कहते हैं, पूजा में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, श्रीफल। कि ज्ञान युक्त बुद्धि से जब ये बात सोचेंगे कि ये घड़ी भी शुभ है और कर्म करेंगे तो उसका फल कैसा होगा, श्रेष्ठ फल, श्री फल होगा। तो इसीलिए हर शुभ कार्य में स्वास्थ्य का निकाला, ये घड़ी भी शुभ है, ज्ञान युक्त बुद्धि से ये बात सोचना है और कर्म करना है, और कर्म करेंगे तो उसका फल श्री फल यानी श्रेष्ठ फल ही मिलेगा। कभी पूछिएगा पंडित जी से कि क्या इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं, आप देखना क्या जवाब देते, ठीक है ना? इसलिए जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, निश्चिंत हो जाओ, बुरा कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर मन में ये प्रश्न आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसका उत्तर है क्योंकि आपने बुरा नहीं किया इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं आगे बहुत बड़ी परीक्षा थी उससे बच गए, बड़ी घात थी उससे बच गए, बड़ा कोई ऐसा ये होनी थी बच गए, छोटी हो गई, उसको छोटे रूप में देखिएगा। ठीक है, अब ये स्वास्तिका कैसे चलता है तो उसको दिखाया गया है स्वास्तिका को, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। शुरुआत कब हुई मालूम नहीं है, लेकिन ये क्लॉकवाइज चलता है। जिस तरह दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है, ऐसे ये काल चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है। सत्यता का युग जहां स्वास्तिका का हाथ इस पोजीशन में है, राइट हैंड साइड पर इस पोजीशन में, अर्थात आशीर्वाद, कि जिस युग के अंदर हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थे। सत्यता का समय था जहां कोई असत्यता का नामो निशान नहीं था, जहां सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवताएं निवास करते थे, जिसको ये दूसरे शब्द में कहते हैं सूर्य वंश। सतयुग माना सूर्य वंश, जहां आत्माएं जो थी सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित सोलह कला संपूर्ण स्थिति में थे, जिसकी कला कम जास्ती नहीं होती थी। उस दुनिया के लिए बाइबल में बहुत सुंदर बात आती है, जेनेसिस चैप्टर 1 में कहा है कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर रचा था तो कैसा था, तो उसमें लिखा है कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर रचा था तो उस समय मनुष्य को अपनी कृति में बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने जैसा बनाया था, संपूर्ण स्वरूप में बनाया था। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। भगवान को मनुष्य को, क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग है जहां मनुष्य है, गॉड मेड मैन जो कलयुग के मनुष्य थे उनको अपने जैसा बनाया। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, मनुष्य को देव बनाने में देर नहीं लगती है उनको। उसी को ही हिंदू संस्कृति में कहा गया, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात कलयुग के अंदर जो नर और नारी है, जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वही अपनी करनी से श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाते हैं। तो हर धर्म में किसी न किसी रूप से ये बात हमें सुनने को मिलती है कि सतयुग के अंदर वो देव स्वरूप में, इतने श्रेष्ठ दिव्य स्वरूप में हर आत्माएं निवास करती थी, परमात्मा का आशीर्वाद सबको प्राप्त था। वो दुनिया कैसी थी तो उस दुनिया के लिए दिखाते हैं कि जहां सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, हर आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में निवास करती थी, जहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, इतना अहिंसक वृत्ति होती थी तो मनुष्य कैसे होंगे। सुख शांति समृद्धि हर रीति से व्याप्त थी, पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती थी और कोई ना कोई देवी या देवता का रूप ले लेती थी, और इस तरह से पूरी एक दैवी दुनिया, सतयुगी दुनिया या सूर्यवंशी दुनिया हम देख सकते हैं। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सूर्य नारायण या सत्य नारायण। सूर्य नारायण सत्य नारायण इसीलिए कहा जाता कि जो सतयुग के राज्य करता थे, जो सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य नारायण सत्य नारायण कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा गया त्रेता युग, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर नीचे आता है, यानी दो कला कम हुई सतयुग त्रेता से, उसको कहा जाता चंद्रवंश, जहां वही देवी देवताएं थोड़ी सीढ़ी नीचे उतरते हैं संपूर्णता से, पवित्रता सुख शांति समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं होती है। इसलिए इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम का राज्य था, तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, इसीलिए दिखाते कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया जिसको कहा चंद्रवंश। और आज भी लोग उसको राम राज्य के रूप में याद करते थे, जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी भारत के लिए राम राज्य का स्वप्न देखा कि चलो सतयुग जितनी परफेक्शन न ला सके, राम राज्य जैसा तो बनाए। लेकिन अफसोस, वो भी एक स्वप्न ही रह गया। लेकिन तब मनुष्य के मन में कभी कभी ये प्रश्न आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो सीढ़ी नीचे उतरना पड़ा। कर्म करने की बात नहीं है, ये संसार एक नियम में चलता है, प्राकृतिक नियम के अंदर। और प्राकृतिक नियम यही है कि कोई भी चीज नई होती है तो पुरानी होती है, पुरानी बनाई नहीं जाती है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल लॉ ऑफ एंट्रोपी है विज्ञान के अंदर, जिसको डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, वहां से अस्त व्यस्त हो जाती है। मकान नया बनाया जाता, खंडर अपने आप बन जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर उसको मोटर द्वारा चढ़ाना पड़ता है। कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में सदा काल नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहती है, कितना दिन? संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहती है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। इसीलिए सदा काल कोई भी चीज एक ही स्थायी स्थिति में नहीं रह सकती है। तो देवताएं भी जब अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वहां से धीरे 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 अपूर्णता की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये कुदरत का नियम है ना? बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ करके शरीर जर्जर होने लगता है, अपने आप होता है। हर दिन ये शरीर पुराना होता जाता है, तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसी तरह देवी देवताएं भी अपने संपूर्णता में थे, धीरे 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 जैसे समय बीतता जाता है तो वैसे वैसे त्रेता युग में आते हैं। त्रेता से फिर द्वापर युग में वृद्धि होती जाती है, और इस तरह से सृष्टि नाटक का तीसरा भाग आता है जिसको कहा जाता है द्वापर, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ गया। राइट माना राइटियसनेस, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म होते थे, अच्छे कर्म होते थे। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया तो द्वापर यानी सत्यता और एकता समाप्त हुई और द्वापर आरंभ हुआ, दोपुर आरंभ हो गया। दोपुर यानी सत्य के साथ असत्य भी मिक्स होने लग गया। और इस तरह से जब असत्य मिक्स होने लगा तो दुख शांति जीवन के अंदर आने लगी मनुष्य के जीवन में, और तभी कहा गया है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो संसार में दुख क्यों आया? क्योंकि सतयुग और त्रेता युग जो सुख का समय था, उस समय भगवान को किसी ने याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर उस समय याद करते थे तो दुख क्यों आता था? तो इसीलिए जो अब द्वापर युग आया तो असत का मार्ग आरंभ होता है, द्वापर आरंभ होता है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगता है। और ऐसा जब समय आया तो जो सतयुग के अंदर भगवान का हाथ इसी पोजीशन में था आशीर्वाद के, वो द्वापर युग आते ही इस पोजीशन में आ जाता है, अर्थात मांगने का पोजीशन। भगवान से मांगना का आरंभ करते हैं कि हे प्रभु शांति दो, सुख दो, ये दो वो दो, हर दिन कुछ न कुछ ईश्वर से मांगना आरंभ कर लेते हैं। और इस युग के अंदर जो आत्माएं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी, धीरे धीरे वापस उस दैवी स्वरूप से, दिव्य स्वरूप से मनुष्य स्वरूप में आते हैं। और जो देवी देवताएं होकर के गए थे उनके ही प्रतिमा रख करके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ करते हैं, क्योंकि मनुष्य इस युग में देह अभिमान के वश में आ जाता है तो अपने दिव्य स्वरूप से नीचे गिर जाता है। और देह अभिमान के कारण न खुद का परिचय है न खुदा का परिचय है, तो इसी युग में शास्त्र का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, पूजा पाठ की रीत रसम रिवाज ये सब आरंभ हुआ। यानी दूसरे शब्द में कहे तो भक्ति मार्ग आरंभ होता है। अब जो देवी देवताएं होकर के गए उनकी स्मृतियां ताजी थी, इसीलिए उनके मंदिर बनाकर भगवान का परिचय तो था ही नहीं, तो किसको भगवान समझे। तो उन देवी देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करना आरंभ कर दिया। जिस तरह आज की दुनिया के अंदर कई संतों का भी मंदिर बनता है, और अगर पूछा जाए कि ये संत तो हमारे जैसे इंसान थे, उनका मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता, तो क्या कहेंगे लोग, हमसे तो वो श्रेष्ठ थे, हमसे वो श्रेष्ठ थे, इसीलिए उनके मंदिर बना करके हम पूजनीय समझते हैं। इसी तरह द्वापर युग में जो आत्माएं आई उनके लिए पूजनीय कौन था? जो सतयुग और त्रेता युग के देवी देवताएं होकर के गए वही पूजनीय थे, इसलिए उनकी पूजा करना आरंभ करते हैं, शास्त्र लिखना प्रारंभ करते हैं, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग के विधि विधान बनाना आरंभ किया और उसी में समाज को बांधना आरंभ किया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और जब भगवान को पुकारना आरंभ किया तो भगवान कोई बच्चों की प्रार्थना को अनसुना तो नहीं करेगा, लेकिन उनका आने का वक्त नहीं है। उनका आने का वक्त घोर अंधेरे के समय है, घोर अधर्म के समय है। गीता के वायदे के मुताबिक यदा यदा ही धर्मस्य, अगर द्वापर में भगवान आ जाए, गीता का ज्ञान दे दे, तो ज्ञान देने के बाद कलयुग की स्थापना नहीं होती है। कलयुग आ नहीं सकता है, घोर अधर्म का युग की स्थापना हुई ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान ने तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना की, सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। तो जरूर कलयुग के अंत में आएंगे, द्वापर के अंत में कैसे आ सकते हैं। कलयुग के अंत में आएंगे तो अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना यानी सतयुग की स्थापना हो सकती है। तो भगवान का आने का वक्त नहीं है, लेकिन उस समय कुछ महान आत्माएं संसार में अवतरित होते हैं। भारत से बाहर तीन महान धर्म पिताएं संसार में आते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना करने, उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना करने लिए, और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसे भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताएं आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना अर्थ। और भारत में तो अनेक ऐसे महान आत्माएं आ जाते हैं, हर स्टेट में कोई ना कोई, हर राज्य में कोई ना कोई ऐसे महान आत्माएं अवतरित होते हैं जो समाज को एक दिशा बताने का प्रयत्न करती है। लेकिन अफसोस, उस समय का समाज उस बात को समझ नहीं पाता है। भारत से बाहर जब ये तीन महान आत्माएं गई, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ प्रचार किए। तो कोई भी धर्म के असली सिद्धांत अगर देखा जाए तो एक जैसा होगा। कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म गलत कर्म करना नहीं सिखाता है। लेकिन जहां ये महान आत्माएं गई, समाज की कुछ व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए। वो प्रचार अलग अलग थे। जैसे जहां इब्राहिम गए थे वहां के समाज की व्यवस्था क्या थी, तो वहां उस समाज के अंदर जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने उस सिद्धांत की गहराई को समझ नहीं सके। उसके बाद जहां महात्मा बुद्ध गए थे वहां उन्होंने क्या देखा उस समाज की व्यवस्था में? दो बातें देखी। और दो बातें कौन सी देखी? पहली बात देखी कि मनुष्य जीवन के अंदर झूठ व्याप्त हो रहा है, दया नाम की चीज नहीं है, और मनुष्य दिन प्रतिदिन कर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो एक तो निर्दयता और दूसरा कर्म भ्रष्ट होना। तब इस व्यवस्था को देखकर उन्होंने जो प्रचार किए, यही दो बात बताई। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, और कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझा नहीं कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, इस बात को समझा नहीं। आज भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते ये लोग? क्या खाते हैं? कुछ भी खाते हैं। जो दुनिया में कोई नहीं खाते वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे, बहन जी आपको कैसे पता? कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है जहां बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल लगे रहते हैं, लोग खास जाते हैं शाम के समय खाने के लिए, तो ऐसे ही हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है, वहां भी स्टॉल लगे हुए रहते हैं और खास लोग खाने के लिए जाते हैं वहां पर। हमारा एक कार्यक्रम था एक आइलैंड पर, तो गाड़ी पार्क करके हमें बोट लेनी थी, तो 10 मिनट उस चौपाटी से गुजरना पड़ा। तो जब 10 मिनट उस चौपाटी से गुजरे तो वहां का जब दृश्य देखा, मुझे कभी भूलता नहीं है। एक जगह देखा, अरे रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं, है ना, फ्राई करके उसको बड़े चाव से लोग खा रहे हैं। कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी, कहां देखा तो हम खेखड़े तले जा रहे थे, बिच्छू की सब्जी बनाई जा रही, क्या क्या खाते हैं लोग, है ना, कुत्ते का घोस्ट उबल रहा था। मुझे किसी ने बताया वहां पर आपको गली में एक भी कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी गली में। मैंने कहा, क्यों, कुत्ता कहाँ चले गए? बोले, यहाँ कुत्ता खा जाते, देखते ही खा जाते हैं लोग, है ना, तो इसीलिए आपको गली में एक भी कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, रास्ते पर कहीं पर भी कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, एक चिड़िया नहीं मिलेगी आकाश के अंदर, चिड़िया देखते ही वो तुरंत ही उसको गिराकर खा लेते हैं, ऐसे लोग हैं। तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है। और अभी तो आपने सुना होगा इंटरनेट पर के ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चे छोटे छोटे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है और वो उस बच्चे को पकाया जाता है, उस बच्चे को फ्राई किया जाता है। आज मनुष्य ऐसा हैवान बन गया है कि अपने बच्चे को भी खाने में हिचकिचाता नहीं है। ऐसा प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य के प्रति भी इतनी निर्दयता उनके अंदर आ गई है। और वेस्टर्न दुनिया में जाए तो जहां पर क्राइस्ट गए थे वहां के समाज की व्यवस्था क्या थी, वहां उस समाज में भी उसने दो बातों को देखा। पहली बात देखी कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त हो रहा है, और दूसरी बात उन्होंने देखी कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत है। और इसीलिए जब ये बात देखी तो उन्होंने अपने प्रचार में कहा कि सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन अफसोस, वहां के लोगों ने भी ये बात को समझा नहीं, और सत्य और प्रेम का संदेश देने वाले जीसस के साथ क्या किया, उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया। कितना नफरतपूर्ण व्यवहार करके उसको क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, ये बताते हैं कि जब हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसलिए दुनिया में जहां भी ये लोग चले गए, गए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद क्या किया, झूठ और नफरत का इस्तेमाल किया, और राजाओं को प्रजाओं से, राजाओं को राजाओं से लड़ाया, और पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देते वक्त क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नफरत के बीज बो दिया। भाई भाई लड़ रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं, है ना? कहने का भावार्थ, किस लिए लड़ रहे हैं, कारण क्या है मालूम ही नहीं है। कारण हो तो निवारण हो, कारण ही नहीं तो निवारण कहां से होगा। इसलिए लड़े जा रहे हैं, निवारण है ही नहीं। भारत पाकिस्तान की खाली बात नहीं करती हूं, सारे वर्ल्ड में आज 350 लड़ाइयां चल रही है, और उन्हीं बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश का दो टुकड़ा हुआ है। कहीं नॉर्थ साउथ हो गया, कहां ईस्ट वेस्ट हो गया, कहां दो देश ही अलग बन गए, है ना? तो कहा अफसोस, प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले जीसस क्राइस्ट की बात को भी नहीं माना, है ना? और इस तरह से धीरे धीरे चौथा युग आया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, कलह युग, जहां स्वास्तिका का हाथ ऊपर उठता है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर उठे, यानी हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेती है, अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। अति धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, दुराचार, पापाचार, सब प्रकार की अति हो गई। और जब ऐसे अति का समय आ जाता है, उसी युग को दूसरे शब्द में हम कहते हैं रावण राज्य। इसको रावण राज्य क्यों कहते, कलयुग को जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था, और आज जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं है, है ना? इसको रावण राज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि रावण के लिए कहा जाता है कि रावण बहुत बुद्धिशाली था, ऊंची जाति का था। रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था, विद्वान था, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास। फिर कहा जाता रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी उसकी, है ना? रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। खूब भक्ति करता था, शिव की भक्ति करता था, और रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं है ना। ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, सारे अस्त्र, दिव्य अस्त्र उसको प्राप्त थे। तो जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। आज की दुनिया को रावण राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज मनुष्य भी सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। आज मनुष्य ने जिस तरह के आविष्कार किए हैं, है ना, विज्ञान की शक्ति के माध्यम से हवा में उड़ने लगा है। रावण की तरह आकाश मार्ग से जाता था, पाताल मार्ग से जाता था, तो आज मनुष्य भी आकाश मार्ग से जाते हैं, पाताल मार्ग से जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली गली में मंदिर है, खूब भक्ति कर रहा है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। मिसाइल पावर है, और इन मिसाइल्स का नाम क्या है? पृथ्वी अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, यही तो नाम है ना। तो मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। और रात्रि के समय में अगर बड़े शहरा का नजारा देखा जाए तो रावण की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। इतना पॉम्प एंड शो, ग्लैमर की दुनिया है, चमकती है। रात्रि के समय में अगर हवाई जहाज से नीचे शहरों को देखा जाए तो कैसी लगती है? सोने की लंका चमक रही है। तो जीवन की जो चार आवश्यकता है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, चारों ही मनुष्य के पास भी है। जो रावण के पास था वह मनुष्य के पास भी है। कहा जाता है कि रावण के पास ऐसी शक्ति थी कि प्रकृति के पांचों तत्व को भी दास बना करके अपने महलों में अपने पलंग के साथ उसने बांध के रखा था। इंद्र देवता उसके महल में पानी भरता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था, अग्नि देवता उसके लिए खाना पकाता था। तो आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से ये पांचों तत्व को अपने घर के अंदर बांध के रख दिया है, है ना। नलका चालू करो तो इंद्र देवता पानी भरता है कि नहीं भरता है आपके घर में? भरता है। अभी कुएं पर जाना पड़ता है किसी को, अरे घर में नलका आ गया तो नलका में बांध दिया उसको, इंद्र देवता को खोलो तो पानी भरता है आपके घर में। गैस चालू करो तो अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, खाना बनाना शुरू करते हैं। और एसी चालू करो, पंखा चालू करो तो वायु देवता पंखा हिलाता है। तो मनुष्य ने अपने घर के अंदर ये प्रकृति के तत्व को बांध के रख दिया है कि नहीं रखा है? तो रावण राज्य ही कहेंगे ना? लेकिन उसके बावजूद, इतनी इतनी शक्ति होने के बावजूद भी रावण का सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि दो बातों की कमजोरी उसके जीवन में आ गई थी। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गया, अनैतिकता। तो आज का मनुष्य भी इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी ये दो बातों की कमजोरी आ गई है, अहंकार चरम सीमा पर है और चरित्र भ्रष्टता आ गई है, इसीलिए सर्वनाश की ओर जा रहा है। बुद्धि भ्रमित हो गई है। जब ऐसा हो जाता है कि जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करे, कलयुग में किसी को बुरी आदतों का बंधन है, व्यसनों का बंधन है, किसी बुराई की बंधन की आदत है, जहां मनुष्य आत्मा अहंकार के वश, खाली अहंकार नहीं लेकिन जो भी विकार है, विकृतियां है, उसके वशीभूत हो गया है, अपने ही कर्मेंद्रिय का गुलाम है, विकारों का गुलाम बन गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, और उसकी शक्लों में तो देखो कितनी विकृति आ गई है। जब ऐसा समय आ जाता है जब मनुष्य को न खुद का परिचय होता है न खुदा का परिचय होता है, तो परमात्मा को भी कहां ढूंढ रहा है, कहां ढूंढ रहा है, कोई न कोई तत्वों में ढूंढने लगा है, प्रकृति में ढूंढने लगा है। कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, किस किस की पूजा करने लग गया। परमात्मा का परिचय ही नहीं है, इसलिए किस किस की पूजा करना आरंभ कर दिया। जब ऐसी हालत हो जाती है तब कहा जाता है अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है, अब ज्यादा समय नहीं है कलयुग को पूरा होने में। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो कितना साल बाकी है, कितना साल बाकी है, कहा अभी तो खाली 40,000 साल गए हैं, 4,32,000 साल बाकी है। अब सोचने की बात है कि कलयुग बच्चा है या थोड़ा सा बचा है, क्या है, थोड़ा सा बचा है ना, अब बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है अभी। इसलिए वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कैसा हो गया मनुष्य, कहां देव तुल्य था, दिव्य स्वरूप में था, और आज कैसा बन गया है। दूसरा गीत भी याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा, सारी अंतिम निशानियां कलयुग की जो है, जो गरुड़ पुराण में बताई है, वो उस गीत में कवि प्रदीप जी ने लिखी है, कि क्या क्या होगा, और वो सारे लक्षण अभी दिखाई देते हैं। तो अब कलयुग बच्चा है या बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अब कोई ज्यादा समय नहीं है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमसे पूछते, बहन जी फिर कितना साल बचा है, ये कलयुग को खत्म होने में अब कितना समय बचा है। हम कहते हैं कि भगवान ने हमें सारा ज्ञान बता दिया, लेकिन बहुत अच्छा किया जो डेट नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, हाँ भगवान ने जब सारा ज्ञान दे दिया तो डेट बताने में उसको क्या प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर डेट बता देते थे ना तो क्या होता था, आप खुशी में ऐसे जो तालियां बजाते हैं ना, बजा नहीं सकते थे। आज अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तेरे पास 24 घंटे हैं, जितना भगवान का नाम लेना चाहो ले लो, तो कितना नाम ले सकेगा, कितना ले सकेगा, घड़ी 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 के तरफ देखता रहेगा, अभी कितना बाकी, कितना बाकी, कितना, भगवान का नाम ले सकेगा, नहीं ले सकता है, टाइम कॉन्शियस हो जाएगा, भगवान को याद नहीं कर सकेगा। अच्छा उसको कहो कि चलो तू भगवान का नाम नहीं ले सकता है, चलो कोई बात नहीं, तेरे पास जो कुछ है दान करके पुण्य तो कमा ले, तो कितना दान कर सकेगा, वो भी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो समय पर भरोसा नहीं है ना, है ना, समय पर भरोसा नहीं है। इसीलिए भगवान ने ये बहुत अच्छा काम किया जो डेट नहीं बताई, नहीं तो जीवन में से खुशी गायब हो जाती थी, न पुण्य कर्म कर सकते थे, न भगवान का नाम ले सकते थे। लेकिन हाँ, भगवान ने इतना बता दिया कि 5000 के हिसाब से बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। बस जो करना चाहो कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं है, है ना? जितना पुण्य करना चाहो कर लो, नहीं तो फिर ये समय भी चला जाएगा, कुछ नहीं हाथ आने वाला है। आज वैज्ञानिक लोग भी ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज जिस तरह से दुनिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गई है, ओजोन लेयर के छेद बढ़ते जा रहे हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना छेद हो गया है, जिस कारण से सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ रही है, अनेक बीमारियां आरंभ हो गई है, और उसका उस छेद को भरने का कोई इलाज नहीं है मनुष्य के पास। ऑक्सीजन का सोर्स वृक्ष ही कटते जा रहे हैं, और जब वृक्ष ही कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो कितना समय ये रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, आज साइंटिस्ट लोग भी कहने लगे, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रहा है तो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ गई है, और ये प्राकृतिक असंतुलन की जो स्थिति है ये बता रहा है कि बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आएंगे, चक्रवात तूफान आएंगे, सुनामी लहरें उठेगी, भूकंप होगा, है ना? ये सारे जो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति है उस कारण से देखने को मिलेंगे, और ये हम महसूस भी कर रहे हैं। और जो भी मिसाइल बनाए हुए हैं ये रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, सारा कंप्यूटराइज कंट्रोल है, सारा दिन देखता रहता है एक व्यक्ति वहां बैठ के, कहीं से कुछ मिसाइल आ तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे। एक दिन घर में जाएंगे और झगड़ा होगा जोरदार, और आएगा टेंशन में, सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, क्या करेंगे। इसीलिए दुनिया में कहा जाता, नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। भले मनुष्य कितनी भी ट्रीटी साइन करा ले कि विश्व युद्ध न हो, ये मिसाइलों का प्रयोग न हो, लेकिन नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। इसीलिए भगवान जो चाहता है वही तो होता है, ऐसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोज। भगवान को अभी ये पृथ्वी को डिस्पोज कर देना है, बहुत पुरानी हो गई, अब डिस्पोज कर देना है। तो इसीलिए अभी कितना 5000 साल से तो प्राकृतिक इम्बैलेंस तो आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए अब इसको डिस्पोज करके नई दुनिया भगवान को बनानी है। इसीलिए जो गीता में वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, कैसे समय पर वो इस संसार में अवतरित होते हैं, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके, अब भगवान भी सिर्फ दो बातें कह रहा है। क्या कहता है भगवान? दो बातें। कौन सी दो बातें कहता है? दो बातें भगवान कह रहा है। पहली बात यही कहते हैं, आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो, यही दो बात भगवान कह रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज के समाज के लोग भी ये दो बातें, सिर्फ दो बातें नहीं समझ सकते हैं। और क्या कहते हैं? अरे बहन जी, सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है ना दुनिया कैसे चलानी है, हम क्यों चिंता करें उसकी, है ना? अभी समय भी संकेत देने लगा है। चलो भगवान की ना मानो, समय की तो समझो। समय कौन सा संकेत दे रहा है? आज दुनिया में नंबर 1 पर बीमारी कौन सी चल रही है? एड्स। एड्स जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसीलिए समय भी संकेत दे रहा है कि आत्म संयम को धारण करो जीवन में। लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं समझता है। समय का दूसरा संकेत कि आज न्यूज़पेपर तो आप हर रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हर रोज पढ़ते हैं ना, एक खबर हर रोज छपती है। कौन सी खबर हर रोज छपती है? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, हर रोज पढ़ते हैं ना। और आपका विवेक क्या कहता, आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे, क्या होगा? बढ़ेंगे। और उस समय आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकेगा, है ना। आज शास्त्र के अंदर भी ये बात आती है कि रावण जैसा, रावण इतना शक्तिशाली, सीता जी को सम्मोहित करके जब ले आया तो अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। और सीता जी को स्पर्श तक नहीं कर सका। सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, जिसके कारण सीता जी ने घास का तिनका उठा करके रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है। कई बार कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि बहन जी, ऐसे समय में भगवान क्यों मदद नहीं करता है? अरे, भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए कह रहा है। जिस तरह दुनिया के अंदर कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है, ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो फाड़ देता बर्तन को, इतना पावर होती है उसके दूध के अंदर, इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, साधारण बर्तन में नहीं रखा जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा जो परम पवित्र है, उसकी पावर कितनी है मदद करने के लिए अगर आ जावे तो पात्रता है। इसलिए भगवान जो परम पवित्र है, उसकी मदद को स्वीकार करना हो तो वो पात्रता चाहिए। इसलिए भगवान कहते योगी बनो, पवित्र बनो, इसीलिए भगवान ने कहा है। लेकिन अब करना न करना आपके ऊपर है। भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करता है, वो बता देता है। करना न करना मनुष्य का काम है। तो मनुष्य क्या कहते हैं, बहन जी फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? हाँ, अरे भगवान के पास सारा प्लानिंग है दुनिया को कैसे चलाना। आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म कैसे हुआ था? जीसस का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, 2000 साल पहले की बात है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। आज भी मदर मेरी के रूप में उसको पूजा जाता है। हाँ, जीसस का बाप कौन था, कभी किसी ने पता किया कौन था उसका बाप? मदर मेरी के मंदिर चर्च मिलेंगे आपको, जीसस के चर्च मिलेंगे और दूसरे सेंटों के चर्च मिलेंगे, संतों के मिलेंगे, उसके पिता का चर्च नहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई पिता ही नहीं है। कुमारी मेरी ने उसको जन्म दिया, तो आज भी उसको मदर मेरी के रूप में पूजा जाता है। हमारे शास्त्रों में आता है पांडव कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे हुई थी? मंत्रों के बल से हुई थी। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी? योग बल से, योगेश्वर जिसको कहा, योग बल से जिसकी उत्पत्ति हुई। तो समय प्रति समय संसार में उत्पत्ति का रहस्य भी बदलता रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब लोगों में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदा काल ये संसार भोग बल से नहीं चला है। कई लोग हमें कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां जो नेचुरल विधि है उससे विरुद्ध दिशा में क्यों ले जाते? अरे, विरुद्ध दिशा में हम नहीं ले जाते हैं, हम वास्तविकता की ओर आपको ले जाते हैं, है ना। आज भी आप जब पेपरों में पढ़ते हैं कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य को, तो क्या कहते हैं? हाँ, उसको नेचुरल मानते हैं? नहीं मानते हैं उसको। तभी तो उसको घृणित कार्य कहते हैं, अमानवीय कार्य कहते हैं उसको। ये मानवीय कार्य भी नहीं है। और आपका विवेक क्या कहता है, आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे, तो ये नेचुरल है या विकृति है? विकृति है। इसीलिए भगवान को भी इस संसार में आना पड़ता है। तब मनुष्य कहते हैं कि फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? क्या सबूत है कि पवित्र विधि से दुनिया चलेगी? कैसे, क्या सबूत है? भगवान जानते थे ये कलयुगी मनुष्य है ना, हर बात में सबूत जरूर मांगेंगे। इसलिए आज भी उसने प्राकृतिक में, प्रकृति के अंदर एक पक्षी को रखा है कि जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है ना, मोर का पक्षी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए आज भी श्री कृष्ण के ताज में, उसके मुकुट के अंदर मोर का पंख सुशोभित है। यह कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है, यह कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है। ये बताया है, सम्मान दिया है श्री कृष्ण ने कि जितना परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है, उतना ही पवित्र ये पक्षी है जो कलयुग के अंदर भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। अगर एक पक्षी कर सकता है तो मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती है? दिव्य स्वरूप में जब होंगे तो नहीं हो सकता है? बहुत शक्ति है दिव्य स्वरूप के अंदर। इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया कैसे चलेगी। भगवान के पास पूरा प्लानिंग है ये दुनिया को कैसे चलाने का। कई लोग इसीलिए आते नहीं है, सोचते हैं कि अरे ब्रह्मा कुमारियों में जाएंगे सब छोड़ना पड़ेगा। अरे क्या छोड़ेंगे आप लोग? ताकत है कुछ छोड़ने की? ताकत है? छोड़ नहीं सकते हैं, ताकत नहीं है मनुष्य के पास, ताकत नहीं है। और इसीलिए हम कहते छोड़ना कुछ नहीं है, है ना, छोड़ना कुछ नहीं। आप आकर के खाली ज्ञान सुनते जाओ, रोज ज्ञान सुनो, अपने आप जो कमजोरी है वो अपने आप निकलती जाएंगी। बाकी छोड़ने की ताकत है। आज लोग जानते हैं गुस्सा करना बुरा है, जानते हैं ना, सेहत के ऊपर भी उसकी क्या असर होती है जानते हैं, है ना, महसूस भी करते हैं, बाद में इतना पश्चाताप भी करते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन कोई छोड़ने के लिए कहे भाई गुस्सा छोड़ दो तो क्या कहेंगे? छूटता नहीं ना। माना जो चीज जानते हैं कि नुकसान कर रही है, खुद के स्वभाव के अंदर जो कमजोरी है वो सेहत को भी नुकसान कर रही है, संबंधों को खराब कर रही है, परिवार को तोड़ रही है, लेकिन फिर भी छूटती है तो छोड़ सकते हैं? सच पूछो तो मनुष्य कुछ भी नहीं छोड़ सकता है, ताकत ही नहीं है, क्योंकि कमजोरी का कोई स्रोत नहीं होता है, शक्ति का स्रोत है। आज अगर यहाँ लाइट बंद कर दिया जाए अंधेरा हो जाएगा। अभी कोई कहे अंधेरे को निकालो, अरे अंधेरे को कैसे निकालेंगे, निकाल सकेंगे? प्रकाश जलाओ, लाइट बत्ती जलाओ, अपने आप अंधेरा दूर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं, प्रकाश का स्रोत है। किसी का हाथ हिल रहा है, कहो हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं, अरे हिलाओ नहीं क्या, उसको ताकत के इंजेक्शन लगाओ, विटामिन दो, टॉनिक दो, तो ये हाथ हिलना अपने आप बंद हो जाएगा। ये कमजोरी है, कमजोरी को कैसे रोकेंगे? इसी तरह अगर आज मैं कहूं कि आप भाई ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना, मनुष्य डर ही जाएगा, भाई इतना तो नहीं छोड़ सकेंगे। हम एक ही बात कहते हैं, पकड़ तो लो, है, जो छूटने वाली चीज होंगी वो अपने आप छूट जाएंगी, उसको छोड़ना नहीं है। ताकत आती जाएंगी, ज्ञान शक्ति है, ताकत आती जाएंगी तो कमजोरी क्या होती जाएंगी, कमजोरी निकल जाएंगी। अंत में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक बनिया था, तो बनिया जा रहा था, तो नदी क्रॉस करनी थी, तो पुल के ऊपर से जा रहा था, पुल कमजोर हो गया था, वहां लिखा भी था कि कमजोर हो गया, इसके ऊपर से कोई जाए नहीं, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं मैं चला जाता हूं। जैसे ही बीच में आए अचानक पुल टूटा, टूटा तो एकदम नदी बह रही थी बड़ी जोर से, बारिश के दिन थे, पानी बहुत फोर्स में था, तो गिरा अंदर, कुछ पकड़ लिया, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। एक सज्जन को लगा अरे बेचारा बनिया मर चला जाएगा, ये तो मर जाएगा। तो उसके पास जाकर के किनारे पर कुछ पकड़ के कहा अच्छा मेरा हाथ, मुझे हाथ दो, तुम्हारा हाथ दो। तो बनिया ने कहा हाथ तो नहीं दूंगा, हाथ तो नहीं दूंगा। अरे भाई तू मर जाएगा, हाथ दो। कहा हाथ तो नहीं दूंगा। तब महसूस हुआ सज्जन को कि बनिया ने कभी देना तो सीखा ही नहीं है, है ना। तो फिर कहा सज्जन ने कि अच्छा मेरा हाथ तो पकड़ लो। कहा वो पकड़ सकता। तो आज हम भी आप सबको यही कहते हैं, हाथ तो पकड़ लो, हाँ देना नहीं है, हाथ पकड़ तो लो, तर जाएंगे, हाँ तो इसीलिए तर जाएंगे। और ये समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के वेला में भी अगर कुछ पकड़ा नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ समय का शिकार बन जाएंगे। इसलिए कहा समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तो पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं, क्या करेंगे, पकड़ सकेंगे, पकड़ लेंगे, हाँ। तो आपके शहरों में, आपके गांव में ब्रह्मा कुमारी की शाखा इसीलिए खोलिए ताकि आप ज्ञान को पकड़ लो, और कुछ नहीं पकड़ना है, ज्ञान को पकड़ना है बस, है ना। ज्ञान को पकड़ो, परमात्मा के शिक्षाओं को जीवन में पकड़ो, उसको जीवन में ग्रहण करो, और तब देखो जीवन कैसा हमारा धन्य धन्य हो जाता है, ठीक है। तो ये है काल चक्र का गुह्य रहस्य। ओम शांति।